एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान और मेरे साथ हैं हमारे आज के विशेषज्ञ।
नमस्कार, और आज हम एक बेहद खास किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव, काहिलील जिब्रान की द प्रॉफिट।
हाँ, द प्रॉफिट वाकई एक ऐसी किताब जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है।
बिल्कुल, ये फिलॉसफी, पोएट्री, स्पिरिचुअलिटी सबका एक अनूठा संगम है।
और मुझे लगता है आज के समय में, मतलब ये जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है, थोड़ी उलझी हुई सी, उसमें जिब्रान के विचार, खासकर प्रेम, काम, खुशी, दुख, आजादी जैसे मुद्दों पर, वो कहीं ना कहीं एक ठहराव देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं।
सही कहा, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी एक मजहब या किसी खास कल्चर से बंधी हुई नहीं है। ये सीधी इंसानियत से, रूह से बात करती है।
बिल्कुल, यूनिवर्सल अपील है इसकी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कालजयी रचना के इसके दिल में उतरें, इसके जो मुख्य विचार हैं, जो गहरे संदेश हैं, उन्हें समझें।
हाँ, और ये भी देखें कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने प्रासंगिक हैं, कैसे काम आ सकते हैं। और ये सारी बातें हम इस किताब पर आधारित कुछ अच्छे विश्लेषणों और सारांशों के आधार पर कर रहे हैं।
तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनकी कलम से ये मोती निकले, काहिल जिब्रान। कौन थे ये, कहाँ से आए थे?
काहिल जिब्रान, उनका जन्म लेबनान में हुआ था 1883 में, लेकिन उनकी परवरिश और जीवन का बड़ा हिस्सा अमेरिका में बीता। तो वो एक तरह से लेबनानी अमेरिकी लेखक, कवि और कलाकार थे।
अच्छा, तो मतलब दो संस्कृतियों का असर रहा उन पर, पूरब और पश्चिम दोनों का।
हाँ बिल्कुल, और यही उनकी खासियत थी। एक तरफ पूरब का वो गहरा रहस्यवाद, वो आध्यात्मिकता, और दूसरी तरफ पश्चिम की जो साहित्यिक परंपरा थी, जो खुलापन था, वो जैसे इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन गए।
तो वो कोई पारंपरिक, मतलब जैसे कोई धार्मिक गुरु या उपदेशक नहीं थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी खासियत यही थी कि उनका ज्ञान किसी एक पंथ या किसी एक किताब तक सीमित नहीं था। वो जीवन के अनुभवों से सीखते थे। उन्होंने बाइबल, कुरान, यहाँ तक कि हिंदू और बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया था।
अच्छा।
हाँ, और साथ ही नीचे और विलियम ब्लेक जैसे पश्चिमी विचारकों से भी वो प्रभावित थे। और हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक कमाल के चित्रकार भी थे, तो वो कलात्मक संवेदनशीलता उनके लेखन में भी साफ झलकती है।
समझ गई, तो शायद यही सब बातें मिलकर उन्हें द प्रॉफिट लिखने के लिए इतना सही बनाती हैं। मतलब पूरब का ज्ञान, पश्चिम का अंदाज, खुद का वो निर्वासन का अनुभव।
हाँ, जिसने उन्हें इंसानी दुख दर्द के प्रति और संवेदनशील बनाया होगा।
और फिर मुश्किल विचारों को भी इतनी आसान, इतनी काव्यात्मक भाषा में कह देना, ये हुनर था उनमें।
बिल्कुल, उनकी भाषा सीधी दिल को छूती है। अच्छा, अब जरा किताब की बात करते हैं। इसकी बनावट कैसी है, कहानी क्या है इसके पीछे?
है अल मुस्तफा।
हाँ।
वो उस शहर में 12 साल रह चुके हैं और अब अपने वतन वापस लौट रहे हैं। तो शहर के लोग जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें विदा करने आते हैं।
वो विदाई के वक्त उनसे गुजारिश करते हैं कि जाने से पहले वो जीवन के जो बड़े सवाल हैं, उन पर कुछ कहें, अपना ज्ञान बांटे।
बिल्कुल, और अल मुस्तफा जो जवाब देते हैं, वही इस किताब के 26 अध्याय हैं। हर अध्याय जीवन के एक अलग पहलू पर है।
जैसे कि
किन किन विषयों पर बात होती है?
ओह, बहुत सारे। प्रेम है, शादी है, बच्चे हैं, काम, देना, खाना पीना, खुशी और गम, कानून, आजादी, तर्क और जुनून, यहाँ तक कि मौत पर भी बात होती है।
वाह, मतलब जीवन का शायद ही कोई पहलू छूटा हो। तो फिर इस पूरी किताब का, कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है?
मूल सार।
अगर एक लाइन में कहना हो तो शायद ये कि जीवन के जो सारे अलग अलग दिखने वाले पहलू हैं, प्यार, काम, खुशी, दुख, ये असल में बिखरे हुए नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये सब एक ही बड़े सच्चाई के, एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के अलग अलग रंग हैं, एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। और असली समझ, मतलब असली ज्ञान, वो किसी बाहरी नियम या किताब से नहीं आता।
तो फिर कहाँ से आता है?
वो आता है अपने जीवन के अनुभवों पर गहराई से सोचने से, और ये महसूस करने से कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, अस्तित्व की एकता को समझने से।
यानी ये किताब कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रही, किसी को अपने पंथ मिलाने की कोशिश नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका मकसद वो है ही नहीं। ये तो बस हर इंसान को जीवन को ज्यादा समझदारी से, ज्यादा शांति से, ज्यादा संतुलन के साथ जीने का एक नजरिया देती है।
मतलब ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ गहरा अर्थ ढूंढ रहा है, सतहीपन से ऊपर उठना चाहता है।
एग्जैक्टली ये पाठक को उकसाती है कि चीजों को टुकड़ों में ना देखे बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखे, घटनाओं के आपसी जुड़ाव को समझे।
ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चलिए अब कुछ खास अध्यायों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, उनके संदेशों को करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेम से, मोहब्बत। इस पर अल मुस्तफा क्या कहते हैं?
अल मुस्तफा प्रेम को एक बहुत बहुत शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स मानते हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छा अच्छा मीठा मीठा नहीं है, ये चैलेंजिंग भी है।
वो कहते हैं कि हम प्रेम को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर हक नहीं जता सकते, बल्कि अगर प्रेम हमें लायक समझता है तो वो हमें कंट्रोल करता है, हमारी दिशा तय करता है। इसमें एक तरह का सरेंडर है, समर्पण।
और इसमें दर्द का भी जिक्र है शायद, प्रेम और पीड़ा का क्या कनेक्शन बताया है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जिब्रान मानते हैं कि प्रेम हमें बेहतर बनाने के लिए, हमारी रूह को साफ करने के लिए हमें दर्द भी देता है।
अच्छा,
जैसे गेहूं को कूटकर भूसी अलग करते हैं ना, वैसे ही प्रेम का दर्द हमें हमारे फालतू के आवरणों से, हमारे अहंकार से मुक्त करता है। ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। ये दर्द जरूरी है।
प्रेम के बाद अक्सर बात आती है विवाह की, शादी की। इस रिश्ते पर जिब्रान के क्या विचार हैं?
विवाह को वो एक बहुत पवित्र, एक आध्यात्मिक साझेदारी की तरह देखते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है।
वो क्या?
वो ये कि ये ऐसी साझेदारी है जिसमें दोनों साथी अपनी आजादी, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। वो मंदिर के खंभों का एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में
कि दो खंभे अलग अलग खड़े रहकर भी एक ही छत को थामते हैं। वैसे ही रिश्ते में साथ रहते हुए भी एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की निजता का सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है।
Let there be spaces in your togetherness. वाह, कितनी कितनी गहरी और कितनी जरूरी बात है ये आज के रिश्तों के लिए भी। अच्छा, अब आते हैं बच्चों पर। मैंने सुना है इस पर उनके विचार काफी क्रांतिकारी माने जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये शायद किताब का सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला हिस्सा है। अल मुस्तफा कहते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की स्वयं के प्रति लालसा के बेटे और बेटियां हैं।
ओहो, ये तो सीधी चोट है उस सोच पर कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं।
एग्जैक्टली, ये उस पारंपरिक नजरिए को चैलेंज करता है जहां माँ बाप बच्चों को अपना एक्सटेंशन समझते हैं।
तो फिर माँ बाप की भूमिका क्या है? अगर बच्चे उनके नहीं हैं तो वो करें क्या?
जिब्रान कहते हैं, माँ बाप धनुष की तरह हैं और बच्चे तीर की तरह।
अच्छा, कैसे?
धनुष का काम है तीर को संभालना, सहारा देना और फिर पूरी ताकत से भविष्य की ओर छोड़ देना। माँ बाप का काम है बच्चों को प्यार देना, सुरक्षा देना, पर अपने विचार, अपनी उम्मीदें, अपने अधूरे सपने वो उन पर थोपना नहीं। बच्चे अपने समय के लिए हैं, उनके अपने रास्ते हैं, अपने सपने हैं, हमें बस उन्हें उड़ान भरने में मदद करनी है।
हे, तो ये तो आज की पेरेंटिंग के लिए गाइडलाइन जैसी बात हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का एक और बड़ा हिस्सा काम, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार। इस पर जिब्रान क्या कहते हैं?
जिब्रान काम को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि जब काम प्यार से, लगन से किया जाए तो वो इबादत बन जाता है, पूजा बन जाता है।
पूजा?
हाँ, उनका वो मशहूर कोट है ना, वर्क इज लव मेड विजिबल। मतलब काम जो है वो प्रेम का ही एक साकार रूप है। जब हम अपने काम में अपना दिल लगाते हैं तो वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहता, वो सृष्टि की लय में, दुनिया को बेहतर बनाने में हमारा एक छोटा सा योगदान बन जाता है।
वाह, मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं अगर उसे शिद्दत से किया जाए।
बिल्कुल, हर ईमानदार काम महत्वपूर्ण है।
ये तो काम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब उन दो भावनाओं पे आते हैं जो धूप छांव की तरह साथ चलती हैं, खुशी और गम, जॉय एंड सॉरो।
हाँ, जिब्रान इनको अलग नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अविभाज्य हैं।
कैसे?
वो कहते हैं तुम्हारा आनंद तुम्हारा ही गम है जो नकाब हटा चुका है। मतलब जहां गहरी खुशी महसूस करने की क्षमता है, वहीं गहरा दुख महसूस करने की भी। इसी में है कि दोनों को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। ये दोनों ही हमारे विकास के लिए जरूरी हैं।
ये संतुलन वाली बात फिर आ गई। अब आते हैं आजादी पर, स्वतंत्रता पर, फ्रीडम। इस पर क्या कहते हैं अल मुस्तफा?
देखिए, वो असली आजादी को बाहरी बंधनों से ज्यादा अंदरूनी मानते हैं। मतलब सिर्फ जेल से छूट जाना या नियमों से आजाद हो जाना काफी नहीं है।
तो फिर असली आजादी क्या है?
असली आजादी है अपनी बेलगाम इच्छाओं से, अपने डरों से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी पुरानी आदतों की गुलामी से मुक्त होना।
अच्छा, मन की आजादी।
हाँ, और इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। जिब्रान कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा आजाद तब होते हैं जब हम जीवन की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, जो उसकी लय है, उसे समझते और स्वीकार करते हैं।
ये बात थोड़ी और समझाएंगे।
स्वतंत्र महसूस करते हैं अपनी मर्जी थोपने की जिद छोड़कर।
ये गहरी बात है। और आखिर में वो विषय जिससे लोग अक्सर घबराते हैं, मृत्यु, डेथ, इसे कैसे देखते हैं जिब्रान?
जिब्रान मौत को अंत की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये जीवन चक्र का एक जरूरी, एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन।
अंत नहीं, बदलाव।
हाँ, वो पूछते हैं मरना क्या है सिवाय हवा में नग्न खड़े होने और सूरज में पिघल जाने के। ये नजरिया मौत के डर को कम करता है। वो कहते हैं कि अगर हम जीवन के दिल को समझ लें तो मौत का रहस्य भी समझ आ जाता है।
अद्भुत। ये सारे विचार मिलकर तो जीवन की एक पूरी फिलॉसफी तैयार करते हैं। अगर हम इन सब गातों से कुछ मुख्य संदेश, कुछ की टेकअवेज निकालना चाहें तो वो क्या होंगे?
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है अस्तित्व की एकता, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जीवन के सारे अनुभव, वो भी जो उल्टे लगते हैं, जैसे सुख दुख, आजादी जिम्मेदारी, तर्क भावना, ये सब असल में एक ही बड़ी सच्चाई के हिस्से हैं।
हमें चीजों को जोड़कर देखना सीखना होगा, टुकड़ों में नहीं। ये कुछ कुछ हमारे अद्वैत वेदांत जैसा लगता है।
हाँ, कह सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है संतुलन और एकीकरण, बैलेंस। जिब्रान बार बार जीवन के अलग अलग पहलुओं में बैलेंस बनाने पर जोर देते हैं। तर्क और जुनून के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, किसी भी चीज की अति से बचना।
ये हमारे यहाँ मध्यम मार्ग की जो बात है उससे मिलता जुलता है।
बिल्कुल। तीसरा संदेश है दैनिक जीवन का आध्यात्मिक आयाम। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा घर या ध्यान में नहीं है। हमारे रोज के काम, रिश्ते, खाना पीना, अगर हम इन्हें पूरी जागरूकता और प्यार से करें तो ये सब भी आध्यात्मिक बन जाते हैं।
यानी पवित्र और सांसारिक में कोई दीवार नहीं है, ये कर्म योग वाली बात हो गई।
हाँ, चौथा संदेश है समुदाय के भीतर व्यक्तिगत प्रामाणिकता। मतलब समाज में रहते हुए, अपना योगदान देते हुए भी अपनी असलियत को, अपनी पहचान को बनाए रखना। दूसरों की देखा देखी या दबाव में आकर अपनी आवाज न दबाना।
ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है, जहाँ फिट इन होने का इतना प्रेशर रहता है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ परिवार और समाज की उम्मीदें बहुत होती हैं, अपनी राह चुनना मुश्किल हो जाता है कई बार।
सही कहा। और पांचवा संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पीड़ा की परिवर्तनकारी शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सफरिंग। दुख, दर्द, मुश्किलों को सिर्फ झेलने की चीज ना मानना,
बल्कि
उन्हें अपने विकास के लिए गहरी समझ और करुणा पैदा करने के अवसर के रूप में देखना। जिब्रान कहते हैं कि दर्द हमें तोड़ सकता है, पर अगर हम चाहें तो वो हमें गढ़ भी सकता है, बेहतर बना सकता है।
ये सारे संदेश जीवन को एक नया नजरिया देते हैं, और ये किताब तो जैसे यादगार पंक्तियों का खजाना है। कुछ खास कोट्स याद आ रहे हैं?
अरे बहुत सारे हैं। एक तो बच्चों वाला, तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये पेरेंट्स को एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है।
हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। दूसरा, काम वाला, काम प्रेम का प्रकट रूप है, ये किसी भी काम को इज्जत देता है अगर मन से किया जाए।
बिल्कुल। और पीड़ा पर वो कहते हैं तुम्हारा दर्द उस खोल का टूटना है जो तुम्हारी समझ को घेरे हुए है। कितनी गहरी उपमा है, दर्द असल में हमारी समझ का दायरा बढ़ा रहा है।
और प्रेम पर वो पंक्ति, और ये मत सोचो कि तुम प्रेम की दिशा को निर्देशित कर सकते हो, क्योंकि प्रेम यदि वह तुम्हें योग्य पाता है तो तुम्हारी दिशा निर्देशित करता है। मतलब प्रेम में कंट्रोल नहीं, समर्पण चलता है।
हाँ, और एक देने पर भी है, जब तुम अपनी संपत्ति में से देते हो तो तुम बहुत कम देते हो, जब तुम स्वयं को देते हो तभी तुम वास्तव में देते हो। मतलब असली दान सिर्फ चीजों का नहीं, अपने आप का है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान।
इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, कोशिश तो की ही जा सकती है। जैसे रिश्तों में, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो, परिवार हो, उन पर हक जताने या उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके स्पेस का, उनकी आजादी का सम्मान करें। वो मंदिर के खंभों वाली बात याद रखें।
स्पेस देना।
और बच्चों की परवरिश में
अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर ना डालें, उन्हें सुने, समझें और उन्हें उनका रास्ता खोजने में मदद करें। आप गाइड बने, कंट्रोलर नहीं। खासकर हमारे यहाँ जहाँ बच्चों पर इतना प्रेशर होता है, ये नजरिया बहुत जरूरी है।
और कामकाज में?
अपने काम में मीनिंग ढूंढें, उसे सिर्फ मजबूरी या जिम्मेदारी ना समझें, उसे लगन से करें, ये सोचकर कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, कर्म ही पूजा है वाली भावना रखें। न ज्यादा खुश हों न ज्यादा दुखी, बैलेंस रखें, अपने दिमाग और दिल में संतुलन साधें।
और जब मुश्किलें आएं तो घबराएं नहीं, उन्हें सीखने का मौका समझें। खुद से पूछें कि ये अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ।
ये वाकई बहुत काम के सुझाव हैं। अगर इन पे थोड़ा भी ध्यान दें तो जिंदगी ज्यादा शांत और मीनिंगफुल लग सकती है। मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही रही कि कैसे रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी, खाने में, काम में, रिश्तों में, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा हो सकता है। बस जरूरत है होश में जीने की।
और मेरे लिए सबसे असरदार बात रही विरोधाभासों को स्वीकार करना, ये समझना कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये भी और वो भी है, सुख दुख, आजादी जिम्मेदारी, अकेलापन साथ, सब साथ चलते हैं। और असली आजादी बाहर नहीं, अंदर है।
बिल्कुल। द प्रॉफिट एक ऐसी किताब है जिसे शायद जिंदगी के हर मोड़ पर पढ़ना चाहिए। हर बार कुछ नया मिलता है। यह हमें खुद को और दुनिया को ज्यादा गहराई और करुणा से देखने की प्रेरणा देती है। और अब अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जिब्रान ने ये बातें करीब 100 साल पहले लिखी थी। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हमेशा कनेक्टेड हैं पर शायद उतने ही अकेले भी, जहां स्पेस मिलना मुश्किल है, वहां रिश्तों में, अपने जीवन में संतुलन और वो अंदरूनी आजादी बनाए रखने के जिब्रान के विचार कितने जरूरी हैं, और क्या आज उनके कोई नए मायने हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।